समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
तो श्रोताओं, आज थैंक्स गिविंग डे है जो कि नवंबर के चौथे गुरुवार को मनाया जाता है। इसके बारे में और जानेंगे, उससे पहले आप सभी श्रोताओं को नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का आकाशवाणी के गोल्ड चैनल पर कार्यक्रम आज सवेरे में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। समय है 7:30 और आज की नई सुबह में हम अब तक के मुख्य समाचार और बहुत सी रोचक जानकारी लेकर एक बार फिर हाजिर हैं। आज सवेरे के इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या तोमर और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी सरबजीत कौर। सरबजीत, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार दिव्या, एंड एज यू सो राइटली सेड दैट टुडे इज थैंक्सगिविंग डे, सो आई डोंट वांट टू मिस दिस अपॉर्चुनिटी टू से थैंक यू टू माय लवली लिसनर्स टू हैविंग टेकन आउट टाइम टू ट्यून इन एंड लिसन टू दिस डेली एडिशन ऑफ आज सवेरे। एंड लिसनर्स, ऑफ कोर्स एज एवरी डे, द नेक्स्ट हाफ एन आवर इज गोइंग टू बी पैक्ड विद लेटेस्ट नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, मेट्रो सिटी अपडेट्स, एंड ऑफ कोर्स दिव्या एंड आई शैल टेक द अपॉर्चुनिटी टू फ्लिप द पेजेस ऑफ हिस्ट्री टुगेदर टू सी व्हाट मेक्स 28th ऑफ नवंबर सो ब्यूटिफुल एंड सो स्पेशल। एंड दिव्या, वन मोर थॉट, that in this fast-paced world, we all need a breather, whether it is from our workplace, daily course. We need to pause and reflect. And what better way to start the day than with this warm quote by Japanese poet Matsuo Basho. Sitting quietly, doing nothing, spring comes and the grass grows by itself. We'll discuss more about Basho later in the show during our segment This Day, where we talk about the historical importance. So without much more time being taken, Divya, let's begin with the news headlines.
आइए नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
Union Information and Broadcasting Minister Ashwani Vaishnaw has called for stricter laws on social media and OTT platforms, replying to supplementaries in Lok Sabha. He said that the existing laws definitely need to be strengthened further to check vulgar contents on the social media. Mr. Vaishnaw said, today, social media is a very big medium of freedom of the press on one hand, but at the same time, on the other hand, due to the absence of editorial check in social media, many types of vulgar content are also displayed. On content in OTT platforms, Mr. Vaishnaw said, there is a lot of difference between the culture of our country and the countries from where these social media platforms have come. He said the concerned standing committee of the parliament should take up this issue and strict laws are made regarding the same.
झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार आज दोपहर बाद 4 रांची के मोरहाबादी मैदान में श्री सोरेन को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। श्री सोरेन ने रांची में कहा कि उन्होंने समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी आमंत्रित किया है। भारतीय तटरक्षक बल के राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास और कार्यशाला का 11वां संस्करण आज केरल के कोच्चि में आयोजित किया जाएगा। 2 कार्यशाला का उद्घाटन रक्षा सचिव राजेश कुमार करेंगे। कार्यशाला का विषय है क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से खोज और बचाव क्षमताओं को बढ़ाना। ये भारतीय खोज बचाव क्षेत्र और उससे आगे स्थान, राष्ट्रीयता या परिस्थिति की परवाह किए बिना बड़े पैमाने पर आकस्मिकताओं के दौरान सहायता प्रदान करने की भारतीय तटरक्षक की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। रक्षा मंत्रालय ने कहा, पिछले कुछ वर्षों में भारतीय तटरक्षक बल एक प्रमुख समुद्री एजेंसी के रूप में विकसित हुआ है, जो स्थिर और प्रभावी समुद्री खोज और बचाव निर्माण की दिशा में सरकार के प्रयासों को सही ढंग से संचालित कर रहा है।
US President-elect Donald Trump has announced the nomination of retired American General Keith Kellogg as special envoy to Russia and Ukraine. In a statement, Mr. Trump said, General Keith Kellogg will serve as assistant to the president and special envoy for Ukraine and Russia. General Keith has led a distinguished military and business career, including serving in highly sensitive national security roles in Mr. Trump's first administration. Mr. Trump has also selected Dr. Jay Bhattacharya, a Stanford physician, economist, and noted COVID lockdown critic, to lead the National Institutes of Health. Namibia's 8th presidential and national assembly elections have concluded, with 15 presidential candidates and 21 political parties competing for leadership. There were a few incidents reported, including a shortage of ballot paper at some polling stations. Vice President Nitumbu Nandi Nathwa, the presidential candidate for the ruling Southwest Africa People's Organization, which has been in power for 34 years, is facing challenges from 14 political parties vying for the presidency and National Assembly seats. If Nandi Nathwa wins, she will become Namibia's first female president. Vote counting is set to begin today, with results expected in the coming days.
लखनऊ में चल रहे सैयद मोदी इंटरनेशनल सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन अगले दौर में पहुंच गए हैं। पीवी सिंधु ने अनमोल खरब को जबकि लक्ष्य सेन ने मलेशिया के सोलेह एदिल को पराजित किया। उनके अलावा मालविका बंसोड, उन्नति हुडा, तस्नीम मीर और महिला डबल्स के लिए अश्विनी पोनप्पा, तनिषा क्रेस्टो और त्रिशा जौली, गायत्री गोपीचंद की जोड़ी भी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है।
And listeners, before we wrap up the headlines, a quick brief about what's happening on the hockey front. Indian junior men's hockey team thrashed Thailand 11-0 in their men's junior Asia Cup 2024 opener in Muscat, Oman yesterday. Arijit Singh Hundal scored a brace in the second and 24th minutes, while Saurabh Anand Kushwaha and Gurjot Singh also netted braces. Arshdeep Singh, Sharda Nand Tiwari, Dilraj Singh, Rohit and Mukesh Topo each added a goal to complete the dominant victory. India controlled the game from start to finish, maintaining possession and showcasing solid defence throughout. India will next take on Japan today.
और अब सरबजीत, आज सवेरे में बारी है सेगमेंट मेट्रो न्यूज की।
जी बिल्कुल, लेट्स बिगिन विद द न्यूज फ्रॉम चेन्नई। अ 17th सेंचुरी स्टोन इंस्क्रिप्शन carved on a flagstone on the floor of a former market gathering site has been discovered in a village in Vendasundar, Dindigul district. The inscription provides details of a man being appointed to operate a toll gate and protect traders passing through the Renigamal Pass on the ancient Grand Trunk Road. The artifact, dated to 1701 AD, was found near the highway close to the pass in a village called Andipatta Kottai. The Department of School Education has scheduled half-yearly practical exams for students of class 10th, 11th and 12th in government, government-aided and matriculation schools starting from December the 2nd. Schools have been directed to take the necessary measures to ensure the smooth conduct of the exams. The practical examinations will serve as a crucial component of the overall assessment for the half-yearly evaluations. And Divya, are you going to update our listeners about Delhi first?
Bilkul. दिल्ली विधानसभा का सत्र कल शुक्रवार से शुरू हो रहा है। सुश्री आतिशी के मुख्यमंत्री पदभार संभालने के बाद यह विधानसभा का पहला सत्र होगा। दिल्ली विधानसभा सचिवालय से मिली जानकारी के अनुसार विधानसभा का सत्र 29 नवंबर से शुरू होकर 3 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें सदन की कुल 3 बैठकें होंगी। सचिवालय के अनुसार कार्य की आवश्यकता होने पर सदन की बैठक बढ़ाई जा सकती है। वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने राजधानी में नशा विरोधी अभियान चलाने की घोषणा की है। पूरे महीने तक चलने वाले इस अभियान में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के लगातार बढ़ते खतरे को लेकर जनता में जागरूकता बढ़ाई जाएगी। यह अभियान 1 दिसंबर से शुरू होगा। यह अभियान अगले 3 वर्ष के भीतर दिल्ली को नशा मुक्त बनाने की एक बड़ी योजना का हिस्सा है। उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसियों को छात्रावासों, महाविद्यालयों, स्कूलों, दवाओं की दुकानों, सभी बस अड्डों और सार्वजनिक स्थलों की गहनता से जांच करने का निर्देश भी दिया है। दिल्ली नगर निगम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शिक्षा विभाग के 2 अधिकारी और 1 कर्मचारी को बर्खास्त और 2 अधिकारी तथा 1 कर्मचारी की सेवा को तुरंत प्रभाव से समाप्त कर दिया है। निगम के शिक्षा विभाग में अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति की राशि वितरण में गड़बड़ी के चलते ये कार्रवाई की गई है। निगम के सेंट्रल जोन के स्कूलों में करीब 1,00,000 बच्चों के कल्याण के नाम पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर लगभग 30 करोड़ रूपये के घोटाले का आरोप है। कुछ महीने पहले निगम की ऑडिट रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ था। इसके बाद इन अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने फर्जी वीजा अपॉइंटमेंट रैकेट में शामिल एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में उत्तर प्रदेश निवासी 3 व्यक्तियों को हिरासत में लिया है। पुलिस के अनुसार 3 आरोपी विदेश में नौकरी की चाह रखने वालों से विभिन्न देशों के वीजा दिलवाने का वादा करके बड़ी रकम वसूलते थे। तीनों आरोपी खुद को वीजा दिलाने वाली कंपनी VFS ग्लोबल का कर्मचारी बताकर ठगी करते थे। आरोपियों ने कथित तौर पर विदेशी नागरिकों के साथ धोखाधड़ी भी की। अपराध शाखा ने अपराधियों के पास से फर्जीवाड़े में प्रयोग किए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मोबाइल फोन और बैंक खाते भी जब्त किए हैं। मीडिया के साथ बातचीत में दिल्ली पुलिस उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि अब तक की जांच में पता चला है कि गिरोह ने 20 से 25 लाख तक के फर्जीवाड़े किए हैं। दिल्ली के पूर्व मंत्री और भाजपा नेता कैलाश गहलोत ने कल दिल्ली विधानसभा से इस्तीफा दिया। श्री गहलोत ने अपना त्यागपत्र दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल को सौंपा है। श्री गहलोत ने कहा कि उनके त्यागपत्र का कारण आम आदमी पार्टी का अपने नैतिक मूल्यों से समझौता कर लेना है, जिसके कारण उनके लिए पार्टी में रहना मुश्किल हो गया था।
वेल, आफ्टर दैट डिटेल्ड अपडेट फ्रॉम दिल्ली, लेट्स गेट सम न्यूज फ्रॉम द साउथ। Well, listeners, the Bengaluru Water Supply and Sewerage Board, BWSSB, has announced a door-to-door Kaveri Water Connection Drive in the state capital. Dr. V. Ram Prasad Manohar, chairman of the BWSSB, stated that the initiative aims to prevent exploitation by middlemen and ensure a seamless process for households. The fifth phase of the Kaveri Water Supply Project, inaugurated on October the 16th by Chief Minister Siddaramaiah, brings an additional 775 MLD of Kaveri water to Bengaluru. Following the project's launch, the BWSSB began collecting data on households requiring water connections. However, complaints emerged about middlemen, interference and confusion with the online application process. In response, the board initiated the door-to-door drive and streamlined the online application system.
और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने कहा कि विकास और पर्यावरण संबंधी चिंताओं के बीच एक अच्छा संतुलन बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि लोगों की वास्तविक समस्याओं के समाधान के मामले में हमें पर्यावरण के प्रति कट्टर नहीं होना चाहिए। राज्यपाल मुंबई में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कन्वेंशन सेंटर में पर्यावरण के लिए जीवन शैली स्थिरता पर भारतीय दृष्टिकोण विषय पर आयोजित एक सम्मेलन में बोल रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि भारतीय आध्यात्मिकता और त्योहार सतत प्रथाओं को रेखांकित करते हैं। उन्होंने कहा कि नदियों, पहाड़ों, पेड़ों की पूजा करना केवल अनुष्ठान नहीं बल्कि जीवन को बनाए रखने में उनकी अपरिहार्य भूमिका की याद दिलाता है। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय संस्कृति हमें सिखाती है कि हम इस ग्रह के मालिक नहीं बल्कि इसके ट्रस्टी मात्र हैं। महाराष्ट्र में वाहन वितरकों के स्तर पर फेसलेस प्रारूप में हल्के माल वाहनों को ऑनलाइन पंजीकृत करने की सुविधा आज से उपलब्ध करा दी गई है। परिवहन विभाग की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार ये सुविधा पूरे महाराष्ट्र के सभी परिवहन कार्यालयों के लिए चालू होगी। इसने बताया कि ये सुविधा सभी संबंधित वाहन वितरकों के पास उपलब्ध होगी। इसमें कहा गया है कि ये सेवा पूरी तरह से फेसलेस है और वाहन वितरक को वाहन मालिक के वाहन पंजीकरण के लिए www.parivahan.gov.in वेबसाइट पर आवेदन करना होगा। इसमें आगे ये भी कहा गया कि वाहन पंजीकरण शुल्क और वाहन कर का भुगतान करके पंजीकरण कराया जा सकता है। महाराष्ट्र के वित्त मंत्रालय ने कहा कि महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, जिसे पहले बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के नाम से जाना जाता था। इसके तहत पंजीकृत निर्दिष्ट ट्रस्टों द्वारा ऑडिट किए गए खाते दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने का फैसला किया गया। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए समय सीमा को 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार ने 26 नवंबर 2024 को एक परिपत्र में विस्तार की घोषणा की।
Well, listeners, now a word of alert. In Telangana, minimum temperatures have further dipped across several parts of the state due to weather formations in the Bay of Bengal. Early in Adilabad and Sirpur in Komaram, Bheem, Asifabad recorded the lowest minimum temperatures of 9 degrees Celsius this morning. The India Meteorological Department has issued an alert for several districts in Telangana, predicting a significant drop in temperatures statewide. Many areas in Sangareddy, Rangareddy and Medak also recorded minimum temperatures below 10 degrees Celsius.
Kolkata.
Well, listeners, I believe we still had an update from Kolkata. So, Divya, share the update from Kolkata to our listeners, please.
Kolkata ke Alipur Zoological Park mein ek hara anaconda saap laya jayega. Filhal, chidiya ghar mein ek pila anaconda saap hai. Ye hara anaconda 7 foot lamba hoga aur aam logon ke liye pesh kiye jane wale se pehle pashu chikitsak ki nigrani mein rahega.
And let's now get an update from IFFI. The 55th International Film Festival of India has reached its final day, with this evening set to mark the grand conclusion of the event. Our correspondent has filed this report.
The International Film Festival of India, or IFFI, is more than just a cinematic event. It's a celebration of creativity, culture, and collaboration that unites cinephiles from across the globe. Every November, Goa transforms into a vibrant hub of artistic expression, hosting loyal and diverse attendees who await this grand festival. As the 55th edition of IFFI nears its conclusion, we reflect on the critical role delegates play in making it a truly memorable experience. Talking to Akashwani, Umang Kaplash, a dedicated cinephile attending IFFI for several years, described the atmosphere as electrifying. He also shared his favorite films from this year's screening, emphasizing how IFFI is a heaven for cinema lovers.
The experience about IFFI in general has been very good. I think the environment and the feel, the atmosphere is fantastic. It is very nicely organized. I attended quite a few movie premieres, and I was very impressed by at least three Hindi movies and one Japanese movie. One was Jab Khuli Kitab, second was Mehta Boys, third was Sali Mohabbat, and all three were very good as each other. I think Tiska Chopra is a fantastic director, and this is her debut film, so I hope she makes many more. And the Japanese film Black Box Diaries was tremendous, very good, very well conceived and very nicely made, and it was a very strong and forceful movie. And I congratulate all the people who have created movies for this festival.
Hem Sankiran Reddy, another enthusiastic delegate from Hyderabad, managed to watch over 25 films during the festival. Speaking to Akashwani, he expressed his appreciation for the exposure to diverse global cinema and the chance to connect with like-minded people.
IFFI, so good. I've been here from 21st of this month. I've seen more than 25 movies. Like, I don't even remember which are the movies that I saw. But it was really good. Got to meet so many people around here. Like, so much of exposure to world cinema. I got to meet so many international filmmakers. And yeah, every day meeting new people. So it's so good. And the movies which I've watched, they're too good. Some of them were 2 billion non-linear screenplay which I saw. Like the song, I Am the Song. The screenplay was too good.
As the 55th edition of IFFI approaches its grand finale, the final day promises to be just as exciting. The day begins with the screening of the Kannada film Mikka Bannada Haki, followed by the much-awaited closing film Dry Season. Adding to the excitement is a special session by legendary filmmaker Ramesh Sippy titled Youth and Cinema, Empowering Aspirants for a Creative Future. The session aims to inspire the next generation of storytellers. The evening will culminate in a spectacular closing ceremony at 5 p.m. celebrating cinematic excellence, global storytelling and artistic collaboration, marking the successful conclusion of the iconic 55th edition. For Aaj Savere with Durgesh Bhadauria, Umvesh Upadhyay, Goa.
और अब आज सवेरे में बात करते हैं महानगरों के मौसम की। दिल्ली में आसपास के क्षेत्रों में आमतौर पर मौसम साफ रहेगा, हालांकि हल्की धुंध छाए रहने की संभावना है। वहीं आज का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई में आसमान साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।
वेल, चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई विद हेवी रेन। द मिनिमम टेम्परेचर वाज 24 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम विल बी अराउंड 28 डिग्रीज। बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई, द मिनिमम टेम्परेचर वाज 18 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम मे गो अप टू 24 डिग्रीज। हैदराबाद इज एक्सपेक्टेड टू हैव partly cloudy sky with haze. The temperatures will hover between a minimum of 13 degrees and a maximum of 29 degrees Celsius.
और श्रोताओं, आज कार्यक्रम की शुरुआत में मैं आपको थैंक्स बोल रही थी, क्योंकि आज थैंक्सगिविंग डे है और आज का दिन उन सभी को आभार व्यक्त करने का दिन है जिन्होंने कभी ना कभी आपकी मदद की, आपके मुश्किल वक्त में आपका साथ दिया और आपको जीवन की ओर लौटाकर आपके चेहरे पर मुस्कान लेकर आए। ये मुख्य तौर पर किसानों का त्यौहार है जो फसल के अच्छा होने पर भगवान को धन्यवाद देने के लिए शुरू हुआ था। और 1863 से पहले ये एक हॉलीडे घोषित नहीं था, लेकिन 1863 में अमरीकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने इसे हॉलीडे घोषित किया। तभी से अमरीका, कनाडा, ब्राजील, जर्मनी समेत कई देश नवंबर के चौथे गुरुवार को थैंक्सगिविंग डे के रूप में मनाते हैं और इसी दिन के बाद से इन देशों में छुट्टियों की शुरुआत हो जाती है और लोग क्रिसमस की तैयारियों में लग जाते हैं। और सरबजीत, और आज कौन सा स्पेशल दिन है 28 नवंबर को?
जी दिव्या, बिसाइड्स थैंक्सगिविंग डे, टुडे इज ऑल्सो द रेड प्लैनेट डे। दिस इज अ डे टू कमेमोरेट वन ऑफ द मोस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग स्पेस मिशन्स टू मार्स। इट वॉज ऑन दिस डे इन 1964 दैट द यूनाइटेड स्टेट्स launched the space probe Mariner 4 on a historic journey towards the red planet. The spacecraft flew past Mars in July 1965, making history as the first ever probe to conduct a successful flyby of a planet. Even more remarkable, it sent back the first close-up photographs of another planet, offering humanity its first detailed glimpse of Mars.
और आइए अब पलटते हैं इतिहास के पन्नों को और जानते हैं कि इतिहास में आज के दिन क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले बात करते हैं 1520 की। फर्डिनेंड मैगलन ने प्रशांत महासागर को पार करने की शुरुआत की और 1660 में लंदन में द रॉयल सोसाइटी का गठन हुआ।
1821, on this day, Panama declared independence from Spain, and 1872, 20th November, Wilhelm Ruiz became the first climber to reach the top of Cotopaxi, the world's highest active volcano in Ecuador.
और 1893 में न्यूजीलैंड में राष्ट्रीय चुनाव में पहली बार महिलाओं ने मतदान किया। 1912 में इस्माइल कादरी ने तुर्की से अल्बानिया के आजाद होने की घोषणा की।
1960, on this day, Mauritania formally declared its independence, and 1975, 28th November, West Indies great bowler Michelle Holding made his test debut against Australia.
और 1996 में कैप्टन इंद्राणी सिंह एयरबस A300 विमान को कमांड करने वाली पहली महिला बनी। और अब बात करते हैं उनकी जिनकी आज है पुण्यतिथि या जयंती। तो सबसे पहले बात करते हैं ज्योतिबा फुले की। महाराष्ट्र में सर्वप्रथम अछूतोद्धार और महिला शिक्षा का काम आरंभ करने वाले महान भारतीय विचारक, समाजसेवी, लेखक, दार्शनिक तथा क्रांतिकारी कार्यकर्ता ज्योतिराव गोविंदराव फुले की आज पुण्यतिथि है। ज्योतिबा फुले ने स्त्रियों की दशा सुधारने और उनकी शिक्षा के लिए वर्ष 1854 में एक स्कूल खोला। ये बालिकाओं के लिए देश का पहला विद्यालय था। लड़कियों को पढ़ाने के लिए अध्यापिका नहीं मिली तो उन्होंने कुछ दिन स्वयं ये काम करके अपनी पत्नी सावित्री को इस योग्य बना दिया। उच्च वर्ग के लोगों ने आरंभ से ही उनके काम में बाधा डालने का प्रयास किया, किंतु फुले रुके नहीं और आगे बढ़ते ही गए। उन्होंने एक के बाद एक बालिकाओं के लिए 3 स्कूल खोल दिए। 1853 में ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले ने अपने घर में प्रौढ़ों के लिए रात्रि पाठशाला खोली।
वी आर ऑल्सो पेइंग ट्रिब्यूट्स टू मेजर संदीप उनी कृष्णन an Indian Army officer who was serving in the 51 Special Action Group of the National Security Guard on deputation. Major Sandeep Unnikrishnan led the commando operation launched on 27 November 2008 to flush out terrorists from Hotel Taj Mahal, Mumbai, in which he rescued 14 hostages. And listeners, we'll also like you to know that the movie Major is made on the, you know, the gallantries that were displayed by Major Sandeep Unnikrishnan. And we have this number from the movie Major.
प्रसिद्ध फिल्म निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक भालजी पिंडारकर ने आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा था। पिंडारकर को वर्ष 1991 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका पूरा नाम भालचंद्र गोपाल पिंडारकर था। भालचंद्र गोपाल पिंडारकर ने मराठी फिल्मों को जिस तरह संवारा वो अद्भुत है। भारत का पहला देसी कैमरा बनाने वाले बाबूराव ने 1925 में बनाई गई भारत की पहली प्रयोगवादी फिल्म सावकारी पाश को 1936 में आवाज दी और सिंगर की शूटिंग के लिए उन्होंने पहली बार रिफ्लेक्टर का इस्तेमाल किया। और प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्माता और न्यू थिएटर्स कलकत्ता के संस्थापक बीरेंद्रनाथ सरकार की आज पुण्यतिथि है। 30 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में ही उन्होंने एक प्रोडक्शन कंपनी इंटरनेशनल फिल्म क्राफ्ट की शुरुआत की। इस कंपनी के बैनर तले बीएन सरकार ने शुरुआत में दो मूक फिल्मों का निर्माण किया। ये फिल्में थी चासर मेये और चोर कांता। भारतीय सिनेमा में बोलती फिल्मों के आगमन के साथ ही 1931 में उन्होंने टॉलीगंज में स्वयं के स्टूडियो का निर्माण किया और इसका नाम न्यू थिएटर्स लिमिटेड रखा। आइए सुनते हैं उनकी फिल्म का ये गीत धूप छांव।
I also, you know, cannot miss upon mentioning about Matsuo Bashe, whom we spoke about in the beginning of the program. Today is Bashe's death anniversary, the great Japanese poet. Bashe was introduced to poetry at a very young age, and after integrating himself into the intellectual scene of Edo, he quickly became very well known throughout Japan. Also, listeners, we have, a lovely bhajan from the great singer, K.C. Day. Today is Krishna Chandra Day's death anniversary. And in fact, Day was S.D. Burman's first musical teacher and mentor. Let's hear this lovely bhajan on whom our production assistant K.P. has worked very, very hard to bring it to our listeners.
Ram naam ke do akshar mein सब सुख शांति समाई।
और अब बात करते हैं जिनकी आज जयंती है। लाखों लोगों को जिंदगी की उम्मीद देने वाले प्रमोद करण सेठी की आज जयंती है। जयपुर फूड के जनक डॉक्टर प्रमोद करण सेठी का जन्म उत्तर प्रदेश के बनारस में 28 नवंबर 1927 को हुआ था। डॉक्टर सेठी हड्डी रोग विशेषज्ञ थे और उन्होंने दुनिया भर में मशहूर जयपुरिया फूड बना करके अपना नाम किया और चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर सेठी के योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री और रेमन मैगेसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
And listeners, today is also the birth anniversary of Ethel Ennis. And we like to leave you on a musical note. He was an American jazz musician whose career spanned 7 decades. We have this lovely number for you.
So you woke up too late, 'cause your heart was so great. You walked right into the trap. That's the lullaby for losers. So you didn't think twice.
और श्रोताओं, हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार तथा उपन्यासकार अमर गोस्वामी की आज जयंती है। वे मनोरमा और गंगा जैसी देश की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं से लंबे समय तक जुड़े रहे। अमर गोस्वामी साहित्यिक संस्था वैचारिकी के संस्थापक भी रहे। उन्होंने कई साहित्यिक पत्रिकाओं का संपादन भी किया। और
एंड दिव्या, आई बिलीव इट्स टाइम नाउ टू वाइंड अप द शो विद यू नो एकेडमिक एंड एडिटोरियल इनपुट्स फ्रॉम आवर एडिटर Manik Sharma. Listeners, it's time to say goodbye and let's wind up the show. Thank you for tuning in. Have a superb day. Namaskar.